लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग मानवीय रिश्तों की जगह न ले, व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करे तथा हमें अपने समय के संकटों का सामना करने में मदद प्रदान करे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, म्यांमार में पिछले शुक्रवार 28 मार्च को आए विनाशकारी भूकंप से बड़े पैमाने पर जान माल की हानि हुई है। नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक भूकंप से 3,500 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई और लगभग 5,000 घायल हुए हैं और 200 अभी भी लापता हैं। बुनियादी ढांचे को भारी क्षति पहुंची है और लाखों आम नागरिकों को मानवीय सहायता की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने म्यांमार में तत्काल बेरोक टोक मानवीय सहायता मार्ग मुहैया कराने की पुकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता एजेंसियों ने आगाह किया है कि म्यांमार में विनाशकारी भूकंप से न केवल बड़े पैमाने पर जान माल की हानि हुई है बल्कि देश में लंबे समय से व्याप्त लैंगिक असमानताएं और गहरी हो रही हैं। इससे लाखों महिलाओं व लड़कियों के लिए जोखिम है। म्यांमार में आपदा प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने में विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम सहायता अभियान में अग्रिम मोर्चे पर सक्रिय है, मगर पहले ही नाजुक हालात से जूझ रहे देश में अस्पतालों पर भीषण दबाव है, मेडिकल आपूर्ति की किल्लत है और बीमारियों के फैलने का जोखिम है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं पूजा यादव।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने म्यांमार में भूकंप की वजह से चुनौतियों से गुजर रहे लोगों के लिए और अधिक पीड़ा बढ़ने की चेतावनी जारी की है। इस आपदा से पहले से ही देश राजनीतिक उथल पुथल, मानवाधिकार उल्लंघन मामलों और बदतरीन मानवीय संकट का सामना कर रहा था। उन्होंने कहा,
म्यांमार टुडे इज द सीन ऑफ अटर डेवास्टेशन एंड डेस्पेरेशन।
म्यांमार में आज पूरी तरह से विनाश व हताशा का दृश्य है। हमें कई मोर्चों पर तेजी से कार्रवाई की जरूरत है। यूएन मानवतावादी कार्यालय के अनुसार भूकंप में 1,70,00,000 लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें करीब 90,00,000 लोगों पर इस तबाही का गहरा असर हुआ है। यंगून और मध्य म्यांमार में सड़क मार्ग को क्षति पहुंचने की वजह से आवाजाही प्रभावित हुई है और जरूरतमंद आबादी तक मदद पहुंचाने के प्रयासों में देरी हो रही है। संयुक्त राष्ट्र ने अपने आपात प्रतिक्रिया कोष से $50,00,000 की धनराशि आवंटित की है, जबकि परियोजना सेवाओं के लिए यूएन कार्यालय ने आश्रय, साफ सफाई, मलबा हटाने और स्वास्थ्य देखभाल के लिए $1,20,00,000 की व्यवस्था की है, मगर विशाल आवश्यकताओं के मद्देनजर अभी और अधिक स्तर पर सहायता धनराशि की जरूरत होगी। यूएन प्रमुख ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जल्द रकम मुहैया कराने का आग्रह किया है, मगर म्यांमार के कई हिस्सों में हिंसक टकराव राहत प्रयासों के लिए एक बड़ी बाधा है। फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद देश में व्यापक पैमाने पर प्रदर्शन, हिंसा हुई और लाखों लोग विस्थापन का शिकार है। भूकंप के बाद की स्थिति और राहत प्रयासों में ये एक बड़ी बाधा है। म्यांमार की सेना और विरोधी गुटों ने मानवीय सहायता प्रयासों को समर्थन देने के इरादे से अस्थायी तौर पर युद्ध विराम की घोषणा की थी। इसके बावजूद सेना ने विपक्षी हथियारबंद गुटों के विरुद्ध अपने हवाई हमले जारी रखे हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने गाजा में भीषण हिंसक टकराव के कारण मृतकों की बढ़ती संख्या पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने 18 मार्च को इसराइल व हमास के बीच युद्ध विराम दरक जाने के बाद फिर शुरू हुई बमबारी में महिलाओं व बच्चों समेत 1,000 लोगों के मारे जाने की खबरों की निंदा की है। यूएन प्रमुख ने इस टकराव में मारे गए सभी मानवीय सहायता कर्मियों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है और इन घटनाओं की पूर्ण स्वतंत्र रूप से जांच कराए जाने की मांग की है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
यूएन प्रवक्ता स्टेफान दुजारिक ने न्यूयॉर्क में पत्रकारों को बताया कि बड़े पैमाने पर इजरायली गोलाबारी और जमीनी अभियान में व्यापक तबाही हुई है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने इजरायली सेना द्वारा एक मेडिकल व आपात राहत काफिले को निशाना बनाए जाने पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया। 23 मार्च को हुई इस घटना में 15 चिकित्सा कर्मियों और मानवीय सहायता कर्मियों की मौत हो गई थी। यूएन प्रवक्ता ने दोहराया है कि सभी युद्धरत पक्षों को मेडिकल, मानवतावादी और आपात राहत कर्मियों की सदैव रक्षा करनी होगी और जीवन रक्षक सहायता प्रयासों के लिए अनुमति दी जानी होगी। उधर मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने सुरक्षा परिषद में सदस्य देशों को कहा, इस घटना से इजरायली बलों द्वारा युद्ध अपराध किए जाने पर चिंता और बढ़ गई है। मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क के अनुसार चिकित्सा कर्मियों और मानवीय सहायता कर्मियों की गोलीबारी में मौत की घटना की स्वतंत्र और विस्तृत जांच होनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानून के किसी भी उल्लंघन के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना होगा। इस बीच गाजा पट्टी में इजरायली सैन्य बलों द्वारा जगह खाली करने के आदेश के बाद हजारों फलस्तीनी फिर से विस्थापित हुए हैं। इस बीच गाजा के लिए सभी सीमा चौकियां बंद हुए एक महीना बीत चुका है और पिछले कई हफ्तों से यहां मानवीय सहायता की आपूर्ति नहीं हो पाई है। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने आगाह किया है कि खाद्य सामग्री खत्म होती जा रही है और सहायता कार्यक्रम धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। साथ ही खाद्य सामग्री की लूटपाट की घटनाएं और असुरक्षा फिर से बढ़ रही है, जिसकी वजह यहां मानवीय सहायता काफिलों का न पहुंच पाना है।
विश्व भर में 10 करोड़ से अधिक लोगों पर बारूदी सुरंगों, युद्ध के दौरान इस्तेमाल में लाए गए विस्फोटों और अन्य आयुध सामग्री के अवशेषों के चपेट में आने का जोखिम है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने शुक्रवार 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बारूदी सुरंग जागरूकता दिवस के अवसर पर यह चिंता व्यक्त की। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
लड़ाई खत्म होने के सालों बाद भी हिंसक संघर्षों, युद्धों के दौरान बिछाई गई बारूदी सुरंगों, विस्फोटकों से आम नागरिकों और मानवीय राहत कर्मियों को जान का जोखिम बना रहता है। यूएन प्रमुख ने कहा कि बंदूकों के शांत हो जाने के बाद भी युद्ध के ये अवशेष मौजूद हैं। मैदानों, सड़कों, रास्तों पर फैले हुए हैं, जिससे मासूम नागरिकों के जीवन, समुदायों की आजीविका पर खतरा है। अफगानिस्तान से म्यांमार तक, सूडान से यूक्रेन, सीरिया और उससे परे तक ये घातक विस्फोटक सामग्री ग्रामीण और शहरी इलाकों में बिखरी हुई है। एक अनुमान के अनुसार हर एक घंटे में विस्फोटक अवशेषों की वजह से एक व्यक्ति हताहत होता है, जिनमें बच्चे भी हैं। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम है सुरक्षित भविष्य, यहीं से शुरू होता है। इसके जरिए दर्शाया गया है कि बारूदी सुरंगों से निपट करके किस तरह से तबाह समुदायों को फिर खड़ा किया जा सकता है।
संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट दर्शाती है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI वर्ष 2033 तक 4,800 अरब डॉलर का वैश्विक बाजार बनने की ओर अग्रसर है, जो कि लगभग जर्मनी की अर्थव्यवस्था के बराबर है। हालांकि विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि यदि उपयुक्त कदम नहीं उठाए गए तो AI का लाभ केवल चंद हाथों तक ही सीमित रह जाने का जोखिम भी है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं अंशु शर्मा।
संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन की नई टेक्नोलॉजी व नवाचार रिपोर्ट में AI क्षेत्र में बढ़ती असमानता पर चेतावनी दी गई है और उसमें छिपी संभावनाओं को साकार करने के लिए एक रोडमैप भी पेश किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार इस टेक्नोलॉजी पर शोध व विकास के लिए होने वाले निवेश का करीब 40% भाग केवल 100 कंपनियों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, जिसमें से अधिकांश संयुक्त राज्य अमेरिका व चीन में स्थित हैं। राष्ट्रीय और कॉरपोरेट स्तर के बाजारों पर इस प्रभुत्व से टेक्नोलॉजी क्षेत्र में दरारें और गहरा होने की आशंका है, जिससे कई विकासशील देश इसके लाभों से वंचित हो सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रगति का एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, लेकिन यह स्वाभाविक रूप से समावेशी नहीं है। इसके मद्देनजर बुनियादी डिजिटल ढांचे में निवेश करने और AI पर नियंत्रण कसने का आग्रह किया गया है। रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि AI से दुनिया भर के 40% रोजगारों पर असर पड़ सकता है। इससे उत्पादकता में तो लाभ होगा, लेकिन स्वचालन से रोजगार खत्म होने का खतरा भी बढ़ेगा। मगर एआई का मतलब केवल रोजगारों की हानि नहीं है, उम्मीद है कि इससे नए उद्यम व अवसर भी पैदा होंगे और श्रमिकों का सशक्तिकरण संभव होगा।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
आशीष देना मुझको प्रभुवर, मेरी शरण में आया हूँ। आशीष देना मुझको प्रभुवर, तेरी शरण में आया हूँ। है अंधेरी राह जगत की, है अंधेरी राह जगत की, ज्योति पाने में आया हूँ। मुझको प्रभुवर, तेरी शरण में आया हूँ। दया का बहता सागर तू है, महती क्षमा का अंबर तू है। दया का बहता सागर तू है, महति क्षमा का अंबर तू है। तेरा प्यार प्रभु सबको है मिलता, तेरा प्यार प्रभु सबको है मिलता। जो भी
वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। वेटिकन स्थित संत मर्था प्रेरितिक आवास में स्वास्थ्य लाभ पा रहे संत पापा फ्रांसिस ने गुरुवार को अचानक संत पेत्रुस महागिरजाघर में प्रवेश कर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में बीमार लोगों को समर्पित जयंती के अवसर पर व्हीलचेयर पर अप्रत्याशित रूप से प्रकट होने के ठीक एक सप्ताह बाद गुरुवार 10 अप्रैल को संत पापा फ्रांसिस एक बार फिर संत मर्था प्रेरितिक आवास के बाहर निकले और उन्होंने संत पेत्रुस महागिरजाघर में कुछ समय व्यतीत कर संत पीयूस 10वें की समाधि पर प्रार्थना की। संत पेत्रुस महागिरजाघर में संत पापा फ्रांसिस की उपस्थिति हालांकि संक्षिप्त थी, तथापि खबर तुरंत फैल गई तथा सैकड़ों उनके दर्शन को उमड़ पड़े। इनमें संत पेत्रुस कारखाने से संलग्न कुछ पुनर्स्थापक भी थे जो इस समय कारखाने द्वारा संपादित कुछ योजनाओं पर सुरक्षात्मक स्क्रीन के पीछे काम कर रहे थे। उन्हें भी संत पापा से हाथ मिलाने का अवसर मिला। बच्चे भी संत पापा का आशीर्वाद लेने आगे आए तथा जयंती वर्ष के लिए रोम आने वाले तीर्थ यात्रियों के कई समूह उनकी एक झलक पाने के लिए आगे बढ़े। संत पेत्रुस महागिरजाघर के पुरोहित मोनसिन्योर वालेरियो दी पाल्मा ने बताया कि संत पापा फ्रांसिस प्रार्थना के द्वार से गुजरे, फिर कुर्सी की वेदी पर गए और अंत में उन्होंने संत पीयूष की समाधि पर प्रार्थना की। उन्होंने बताया कि संत पापा ने इस अवसर पर किसी से बात नहीं की, किंतु उनके हाव भाव उनके आसपास मौजूद लोगों के प्रति स्नेह और निकटता का भाव झलका रहे थे। कुछ लोग संत पापा फ्रांसिस के नजदीक आने के लिए कतार में भी लग गए थे, इसलिए कि उनके स्वास्थ्य लाभ के दौरान आम दर्शन समारोह सहित उनके सभी कार्यक्रम स्थगित रहे थे। वेटिकन में परम धर्म पीठीय कार्यालयों में सेवारत धर्माधिकारियों के लिए जारी चालीसाकालीन आध्यात्मिक साधना के अवसर पर प्रवचन करते हुए शुक्रवार को प्रवचनकर्ता फादर रोबर्टो पाजोलिनी ने प्रभु येसु ख्रीस्त के स्वर्गारोहण की जिम्मेदारी पर चिंतन किया। फादर पाजोलिनी ने कहा कि प्रभु येसु ख्रीस्त ईश्वर के साथ रिश्ते में प्रवेश करने हेतु विश्वास के साथ पार करने का एक द्वार है, जो बारीकियों और गतिशीलता से समृद्ध एक जीवन भी है, जिसके लिए हमें धैर्य के साथ अपने दिलों को परिवर्तित करने हेतु आमंत्रित किया जाता है। उन्होंने कहा कि येसु के बपतिस्मा, उनकी सार्वजनिक प्रेरिताई और जीवन तथा अंततः पुनरुत्थान पर विचार करते हुए हमने सुसमाचार द्वारा परिवर्तित मानवता के आवश्यक लक्षणों को पहचानने का प्रयास किया है और यह है हर चीज का उपहार के रूप में स्वागत करना, फिर सफलताओं और असफलताओं से आगे बढ़ना, अंततः हर हार के बाद फिर से उठ खड़े होने की विनम्रता रखना और शांति में जो कुछ अनुभव किया गया है उसके आनंद का अनुभव पाने का प्रयास करना। हालांकि उन्होंने कहा कि एक अंतिम गुण है जो अक्सर छिपा होता है, जिसे हमारा जीवन अपनाना सीख सकता है, वह है हर संभव और आवश्यक कार्य के उपरांत अलविदा कहना जानना। और प्रभु येसु ने स्वर्गारोहण के समय यही किया था। उस विदाई समारोह में उन्होंने हमारे लिए एक बहुमूल्य विरासत छोड़ी। उन्होंने हमें दिखाया कि इतिहास को उसकी स्वतंत्रता प्रदान करके तथा एक सार्वभौमिक और समावेशी आशा की सीमाओं को व्यापक बनाकर हम इस परिदृश्य से बाहर निकल सकते हैं। फादर पाजोलिनी ने कहा कि स्वर्गारोहण में येसु ख्रीस्त ने हमारा परित्याग नहीं किया, बल्कि हमसे यह प्रतिज्ञा की कि वे पुनः लौटेंगे। इसलिए हमें अपनी निगाहें पृथ्वी की ओर झुकानी चाहिए, क्योंकि येसु मसीह उसी तरह वापस आएंगे जिस तरह मानवता ने उन्हें स्वर्ग में आरोहित होते देखा था। उन्होंने कहा कि अंत में येसु मसीह की शानदार वापसी का ऐतिहासिक पूर्वानुमान ईश्वर के संतानों की जीवित गवाही द्वारा लगाया जाता है। स्त्रियों और पुरुषों को ख्रीस्त के मुखमंडल को पारदर्शी बनाने, उनकी दानशीलता को मूर्त रूप देने और विश्व में उनके आगमन के रहस्य को प्रकट करने के लिए बुलाया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में परम धर्मपीठ के स्थायी पर्यवेक्षक महाधर्मादेश गैब्रियल काच्या ने बुधवार 9 अप्रैल को न्यूयॉर्क में जारी जनसंख्या और विकास आयोग के 58वें सत्र की आम बहस को संबोधित करते हुए विश्व के कई क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर के अस्वीकार्य रूप से उच्च होने पर दुख व्यक्त किया, जिनमें से कई को रोका जा सकता था। महाधर्मादेश काचा ने खेद व्यक्त करते हुए कहा, बाल मृत्यु दर कई क्षेत्रों में अस्वीकार्य रूप से उच्च बनी हुई है, जहां 5 वर्ष से कम आयु के लाखों बच्चे हर साल कुपोषण और संक्रामक रोगों जैसे रोकथाम योग्य कारणों से मर जाते हैं। इस क्षेत्र में 2015 से रुकी हुई प्रगति के प्रति ध्यान आकर्षित कराते हुए उन्होंने कहा कि मात्र मृत्यु दर भी बहुत अधिक बनी हुई है। महाधर्माध्यक्ष ने कहा कि यह अनिवार्य है कि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने और कल्याण को बढ़ावा देने की चुनौतियों को केवल तकनीकी मुद्दों को संबोधित करने तक सीमित नहीं किया जाए, बल्कि एक समग्र दृष्टिकोण को अपनाया जाए जो मानव विकास के सभी पहलुओं की परस्पर संबद्धता को पहचानता हो। जिनीवा में संयुक्त राष्ट्र संघीय कार्यालयों में परम धर्मपीठ के स्थायी पर्यवेक्षक महाधर्माध्यक्ष एत्तोरे बालिस्त्रेरो ने इस तथ्य पर चिंता व्यक्त की कि सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के बावजूद कई विकासशील देशों में अभी भी इनका प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए बुनियादी ढांचे, संसाधनों और विशेषज्ञता का अभाव बना हुआ है। विज्ञान एवं तकनीकी संबंधी आयोग में विश्व शिखर सम्मेलन के बाद सूचना प्रौद्योगिकी का विकास शीर्षक के अंतर्गत चल रही बैठकों के 28वें सत्र में वैटिकन के प्रतिनिधि महाधर्माध्यक्ष बालिस्त्रेरो ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के विकास ने दुनिया भर में आर्थिक, सामाजिक और शासन संरचनाओं पर गहरा प्रभाव डाला है, जिसने कई नए अवसर उत्पन्न किए हैं। हालांकि उभरती प्रौद्योगिकियों की तैनाती और उनकी पहुंच में काफी असमानताएं बनी हुई हैं। कई विकासशील देशों में अभी भी उनके प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए बुनियादी ढांचे, संसाधनों और विशेषज्ञता का अभाव बना हुआ है। इस बात के प्रति उन्होंने सचेत कराया कि AI यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उभरती हुई तकनीकें चुनौतियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए नए समाधान प्रदान करती हैं। इस गलत धारणा से बचना चाहिए कि तकनीकें सभी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। वास्तव में इस तरह का तकनीकी प्रतिमान दक्षता के नाम पर मानवीय गरिमा, बंधुत्व और सामाजिक न्याय को दरकिनार कर देता है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।